आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
हेलो, गुड इवनिंग। ये 12 अप्रैल का दिन भर है। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। पंजाब का भटिंडा आज सुबह गोलियों से गूंज उठा। ये गोलियां मिलिट्री कैंप के भीतर चली, सेना के जवान ने 4 जवानों पर चलाई। लेकिन क्यों, बात करेंगे इस पर। फिर बात होगी विपक्षी एकता की। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आज कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे। राहुल गांधी वहां पहले से मौजूद थे।
खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है।
ऐसा क्या खास था आज की मीटिंग में जो राहुल गांधी इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं? इसके बाद पड़ोसी देश म्यांमार की तरफ देखेंगे। वहां मिलिट्री की सरकार पर आरोप है कि उसने आम नागरिकों की भीड़ पर बम बरसा दिया। 100 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। म्यांमार की इस हरकत को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कैसे देखती है, उसकी चर्चा भी करेंगे। मार्च महीने तक के महंगाई दर के आंकड़े भी आ चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि महंगाई घटी है, कितनी घटी है, कैसी घटी है, नंबर्स के आधार पर इसे समझेंगे। और आखिर में आज का भौचक भी आएगा, लेकिन पहले सुनते हैं गर्वित श्रीवास्तव से 60 सेकंड्स हेडलाइंस।
शुक्रिया जमशेद। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एनकाउंटर, पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं, 18 अप्रैल को होगी सुनवाई। 15 महीने के निचले स्तर पर रिटेल महंगाई मार्च में घटकर 5.66% पर आई। प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचा अतीक अहमद, कल होगी कोर्ट में पेशी। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार, कहा पार्टियों को करना होगा एकजुट। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवादी ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, टिकट न मिलने पर छोड़ी पार्टी। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे बंगाल, 14 अप्रैल को बीरभूमि में करेंगे जनसभा। तेलंगाना के खम्मम जिले में फटा सिलेंडर, 2 लोगों की मौत, 6 घायल। महिंद्रा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन केशव महिंद्रा का निधन, 1963 से 2012 तक संभाली थी ग्रुप की कमान। यूक्रेन में तैनात हैं अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो फोर्स, पेंटागन की लीक हुई फाइल्स में हुआ खुलासा।
आप आज तक रेडियो का इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट सुन रहे हैं। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आज सुबह पंजाब के भटिंडा के लोगों की नींद गोलियों की आवाज से खुली। तड़के सुबह 4:35 पर मिलिट्री कैंप के अंदर से एक के बाद एक कई गोलियों की आवाज आई। पूरे इलाके में अचानक से दहशत पसर गई। वहां मौजूद लोगों को पहले तो शक हुआ कि आतंकी हमला हुआ है, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि यह मामला आंतरिक है। पंजाब की मंत्री अनमोल गगनमान ने भी मीडिया से यही बात कही। फायरिंग की यह घटना आर्टिलरी यूनिट के ऑफिसर्स मेस के पास हुई थी। इस घटना के बाद आर्मी कैंट के सभी एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं और इस पूरे घटनाक्रम को तफसील से समझने के लिए हमने बात की भटिंडा में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल से।
देखिए, जहां तक इस घटना का सवाल है, सुबह 4:35 पर यह घटना होती है। भटिंडा के एक मिलिट्री स्टेशन में गोलीबारी की आवाजें लोगों को सुनाई देती है और उसके बाद जान शुरू हो जाती है। और जब पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आता है तो पता चलता है कि इसमें 4 जवानों की मौत होती है और उसके बाद पूरे भटिंडा में हाई अलर्ट घोषित किया जाता है और मिलिट्री की जितने भी यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कंटोनमेंट्स हैं, सभी पर जो चौकसी बढ़ा जाती है। अभी कुछ जानकारियाँ सामने आई हैं, वो ये कि पंजाब पुलिस पहले ही इसको एक टेरर इंसिडेंट नहीं मान रही है, ये कोई आतंकी हमला नहीं है। और उसके बाद अब सूत्र ये भी बताते हैं कि ये जो गोलीबारी हुई थी वो मिलिट्री स्टेशन के भीतर ही हुई थी और बाहर से ये गोलीबारी नहीं हुई। और अब कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसमें एक आर्मी का ही जवान शामिल है जिसने इन 4 जवानों की हत्या की है। हत्या क्यों की गई, हत्या की गई या नहीं की गई और क्या उसका मकसद था, ये अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाया। लेकिन सूत्र बताते हैं कि हो सकता है कि 2 दिन पहले एक इंसास राइफल और 28 राउंड जो गायब हुए थे उसका इस्तेमाल करते हुए उस जवान ने अपने साथियों की हत्या कर दी हो। लेकिन फिलहाल जो आर्मी की अथॉरिटीज हैं या फिर पुलिस है इस पर कोई जानकारी नहीं दे रही है। जाँच अभी चल रही है। जो साउथ वेस्ट कमांड का मुख्यालय है वहाँ से एक रिलीज जारी हुआ है, उसमें कहा गया कि अभी तक पंजाब पुलिस और मिलिट्री अथॉरिटीज का एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, उसे खत्म नहीं किया गया। लेकिन जहां तक ग्राउंड रियलिटी की बात है, हम लोग मिलिट्री स्टेशन के बाहर ही मौजूद हैं। अभी भी भटिंडा के कई जो संपर्क मार्ग हैं और जो ऐसे राजमार्ग हैं जो मिलिट्री स्टेशन से होकर गुजरते हैं उनको या तो बैरिकेटिंग कर दी गई है या उनको सील कर दिया गया है। मिलिट्री स्टेशन के भीतर जितने लोग रह रहे हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो आप तो घरों के भीतर ही रहें, और उसके अलावा जो पुलिस है उसने बाकायदा लोगों से अपील की है कि अफवाह में ना आए और अगर कोई जानकारी मिलती है प्रशासन को उसकी सूचना दे। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या हमलावर पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी जो मिली है वो ये कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस अभी इस जानकारी की पुष्टि नहीं कर रही है। और जहां तक दो दिन पहले इंसास राइफल और 28 राउंड गायब होने की खबर है उसे उसकी पुष्टि जो है एसएचओ कर दी है। उसने बताया कि कल ही इसकी जो शिकायत थी वो पुलिस को दी गई थी। तो बहुत संगीन मामला ये है। सबसे पहले तो ये कि आर्मी कंटोनमेंट से कोई हथियार चोरी हो जाए और वो भी असला और वो भी गोली के साथ, तो ये पहली बात। दूसरा ये आधिकारिक तौर पर साफ हो चुका है ये कोई आतंकी हमला नहीं है। तीसरी बड़ी बात है कि अगर आर्मी के जवान नहीं अपने साथियों की जान ली है तो उसके क्या कारण है? क्या वो फ्रस्ट्रेटेड था, क्या उनके साथ कोई रंजिश थी या कोई और कारण था? तो ये सभी बिंदु हैं जिन पर जो आर्मी है और पुलिस है सब जांच कर रही है। इस वक्त जो चार जवान थे उनका पोस्टमार्टम इसी कंटोनमेंट के भीतर हो रहा है। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन है उसने भी 3 एम्बुलेंसेज भेजी थी जिनको बाहर भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर अभी जांच चल रही है। पूरा खुलासा तभी हो पाएगा जब जांच पूरी होगी और जो सेना अधिकारी हैं इसकी पुष्टि करेंगे और उसके बारे में जानकारी मीडिया को देंगे।
तो जैसा कि मंजीत बता रहे थे कि इस घटना की जांच शुरू हो चुकी है, वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी इस तरह फौज के भीतर आपस में हिंसा और उसमें जवानों का एक दूसरे के ऊपर हमला करने की खबरें हम पहले भी देखते रहे हैं। भारत में ये जिस तादाद में हो रही है ये चिंता की बात है। इसको लेकर क्या आंकड़े हैं और ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, ये जानने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे के पत्रकार अक्षय डोंगरा से।
तो जो हमारे फौजी होते हैं काफी तनावपूर्ण एनवायरनमेंट में काम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि उन्हें कई बार ऐसे भी हालात हो जाते हैं कि उन्हें छुट्टी ना मिले, घर में किसी की तबीयत खराब है, ऐसे छुट्टी कई बार नहीं मिल पाती, कोई जरूरी छुट्टी की जरूरत है वो नहीं मिल पाती, तनावपूर्ण स्थिति में उन्हें काम करना पड़ता है, पीटीएसडी होती है जंग के बाद, कई सारे फौजी होते हैं डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ऐसे में मानसिक साइकोलॉजिकल प्रेशर के चलते कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई फौजी इतने तनाव में चला जाता है, इतने हताशा में चला जाता है कि वो ये अपने ही साथियों पर गुस्से में आकर या फिर फ्रस्ट्रेशन के चलते, साइकोलॉजिकल इश्यूज के चलते हमला कर देता है, या फिर या तो ग्रेनेड फेंक दिया या फिर उनके ऊपर गोली चला दी। और अक्सर देखा गया है उसके बाद फ्रेट्रिसाइड के इशू के तुरंत बाद जैसे ही वो होश संभालता है, जैसे उसको समझ में आता है कि उससे क्या ये हो गया है, तो ऐसे में हमने देखा है कि कई बार जो वो फौजी होता है वो अपनी जान भी खुद ले लेता है। अब अगर बात की जाए काफी इस भटिंडा के इंसिडेंट से पहले जो एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ था वो जुलाई में हुआ था 2022 को, जब दो आर्मी के जवानों की जान गई थी और दो घायल हुए थे। ये हुआ था पुंछ में, पुंछ जिले में जम्मू कश्मीर में, जब एक फौजी थे इन्होंने अपने ही 3 साथियों पर हमला कर दिया, उन पर फायरिंग कर दी जिनमें से एक की जान चली गई और 2 घायल हो गए, और इन्होंने उसके तुरंत बाद अपने भी सर पे गोली मार दी जिससे उनकी जान चली गई। तो ऐसे हमारे पास ये आंकड़ा आया कि दो जवानों की जान गई और 2 जवान इसमें घायल हुए। अब जो भटिंडा में जो केस हुआ है, सूत्रों की बात की जाए और ये काफी हाईली प्लेस सूत्र है, तो उनके हिसाब से कोई टेरर एंगल नहीं है, कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आया था, बल्कि आपस में 4:30 बजे ये वाकया हुआ भटिंडा में, और जिसमें जिसने हमला किया वो भी फौजी था और उसने अपने साथ ही सोते हुए फौजियों पर हमला कर दिया। तो ये भी फ्रेट्रिसाइड की कहीं ना कहीं श्रृंखला में आता है। लेकिन फौज में जितने फ्रेट्रिसाइड के केसेस है, अगर आंकड़े पेश किए जाए 2014 से लेकर 2021 तो 18 वाकये हुए हैं फ्रेट्रिसाइड के, यानी कि आपसी आपस में ही गोलीबारी के, जिनमें से ज्यादातर मामले ये जो थे ये फौज में हुए हैं, यानी कि थलसेना में हुए हैं, और इसमें 2 ऐसे 18 में से 2 ऐसे मामले थे जो भारतीय वायुसेना के हुए। ये 2014 से 2021 के बीच का आंकड़ा है, यानी कि 18 ऐसे इंसिडेंट हुए। लेकिन वही अगर बात की जाए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की, यानी कि BSF, CISF, CRPF, सीमा सुरक्षा बल, इन सभी की अगर बात की जाए तो इनमें कई ज्यादा फ्रेटरसाइड के केसेस होते हैं। अब इसका कारण कई सारे हो सकते हैं। आर्मी एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, तो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वहां पर ये हिसाब रहता है कि छुट्टी टाइम से मिल जाए, या फिर ये सुनिश्चित किया जाता है कि फौजी को अगर किसी तरह की समस्या हो तो पूरी तरह से उस पर ध्यान दिया जाए। सीएपीएफ में संख्या बहुत ज्यादा होती है, और सिर्फ ये ऐसी ड्यूटी नहीं है सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की जो बॉर्डर पर तैनात रहेंगी। इनमें से कई सारे फौजी ऐसे भी होते हैं जिन्हें इलेक्शन ड्यूटीज पर लगाया जाता है। अगर आप देखें तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर भी सीआरपीएफ के जवान तैनात होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बीएसएफ के जवान बॉर्डर के अलावा अन्य सिक्योरिटी उस ऑपरेशन में भी डिप्लॉय होते हैं, तो उनके ऊपर वर्कलोड कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा रहता है। और इसके चलते ये देखा गया है कि फ्रेटरसाइड के केसेस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में ज्यादा होते हैं। आंकड़े की अगर बात की जाए तो 29 ऐसे ऐसे केस 29 जवानों की जान गई थी हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, और ये आंकड़ा केवल 2018 से लेकर 2022 के बीच का है। और इस आंकड़े को पेश किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स ने, नित्यानंद राय ने, और ये आंकड़ा दिया गया 28 मार्च 2023 को। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि हालांकि केसेस होते हैं, लेकिन फौज के मुकाबले थल सेना, वायु सेना, जल सेना के मुकाबले सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में ये मामले कुछ ज्यादा आ रहे।
तो अक्षय, भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए मौजूदा वक्त में क्या किया जा रहा है और क्या किया जा सकता है?
हालांकि छुट्टी ना मिलना वगैरह कारण है, लेकिन इसमें पर्सनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स बताया जाता है कि वो इशू हो सकता है, फैमिली रिलेटेड इशू हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, और काम से रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं। और वही एक आखिरी चीज ये भी कि सरकार से ये भी पूछा गया कि आप इसमें क्या ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं कि फ्रेटरसाइड के केसेस को कमी लाई जा सके, या इसके अलावा आत्महत्या के भी केसेस है उनमें कमी लाई जाने को लेकर सवाल पूछा गया था। तो यही बताया गया है सरकार द्वारा कि कई सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। आपसी जो जो ट्रूप्स होते हैं जो आपस में इनका मिलने जुलने के प्रोग्राम होते हैं उनको बढ़ाया जाता है। कई बार उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलर्स को बुलाया जाता है, उनके द्वारा ट्रेनिंग करवाई जाती है, खाने की क्वालिटी है वो पर्याप्त मिले, कपड़े पर्याप्त मिले, ट्रेनिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट ढंग से हो। तो जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है यानी कि कोई खेल कूद हो, या फिर अन्य बाहर ले जाने घुमाने का कोई ऐसा इवेंट निकल आए आर्मी द्वारा या फिर फोर्सेज द्वारा, छुट्टियां ढंग से दी जाए, सीनियर्स तक पहुंचने की सुविधा सभी जवानों को हो चाहे वो किसी भी लेवल के हो, मूवमेंट की फैसिलिटीज है जो बॉर्डर एरियाज में तैनात होते हैं गार्ड जो हमारे फौजी होते हैं उनको बकाया मतलब उनकी जो छुट्टियां है वो टाइम से मिलती रहे। तो ये सभी कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, और उम्मीद यही की जाती है कि इन केसेस में जल्द से जल्द और कमी लाई जा सके ताकि ये आंकड़ा शून्य पे पहुंचे।
खुद सरकार भी ये मानती है कि जवानों पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, जो ऐसी घटनाओं की एक वजह है। और हमने ऐसी रिपोर्ट्स भी देखी हैं जो कहती हैं कि भारतीय सेनाओं में बड़ी मात्रा में जगह खाली हैं। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। उनके 3 दिन के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज उन्होंने 10 राजाजी मार्ग स्थित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, साथ ही उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। राहुल गांधी ने इस भेंट को ऐतिहासिक बताया।
इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें, और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे, ये बात तय हो गई है।
नीतीश कुमार ने 2024 आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए कहा कि विपक्षी एकता के लिए ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक मंच पर लाने की जरूरत है। हालांकि राजस्थान में ही, जहां अभी कांग्रेस की सरकार है, पार्टी के दो धड़े एक मंच पर नहीं दिखते, लेकिन ये दूसरी बात हो गई। लंबे समय से विपक्षी एकता से जुड़ी मुलाकातें लगातार हो रही हैं। नीतीश कुमार ने कई मौकों पर कांग्रेस को इसका केंद्र माना है, इसलिए ये बात भी उठ रही है कि उन्हें ही यूपीए का संयोजक बनाया जाए। और प्रधानमंत्री के चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर वो खुद का नाम आगे नहीं रखते हैं और इसे चुनाव के बाद पर टाल देते हैं। लेकिन आज क्या हुआ और आज की मुलाकात की महत्ता क्या है, इसे समझने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो पत्रकार मौसमी सिंह से।
देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार खड़गे के घर आए और उनके साथ तेजस्वी यादव एक ही गाड़ी में बैठ के आए, फिर उन लोग ने प्रेस वार्ता भी की, एक साथ फोटो ऑप की, तो राहुल गांधी तेजस्वी को आगे करते हुए नजर आए, तो अपने आप में इसके बॉडी लैंग्वेज के और साथ खड़े होने के सियासी मायने हैं। और बहुत लंबे समय से इस बात का इंतजार हो रहा था कि कांग्रेस पहले हाथ बढ़ाएगी या कुछ सियासी सरगर्मी बढ़ेगी, जहां तक विपक्ष की एकजुटता का सवाल है। अपने आप में नीतीश कुमार कई बयान दे चुके थे बिहार से, पर दिल्ली नहीं आए थे, तो नीतीश कुमार की दिल्ली दस्तक जो है वो एक स्टार्ट उसने की है, एक शुरुआत हुई है विपक्ष की एकजुटता को लेकर। चार नेता आपस में बैठ के बात किए हैं, 4 से 24 भी हो सकते हैं, और इसी फिराक में तमाम ये जो नेता थे वो कह रहे थे कि अब बाकी दलों से भी संपर्क साधा जाएगा। तो अपने आप में ये एक निर्णायक या हिस्टोरिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक शुरुआत हुई है, और नीतीश कुमार का अपना कदकाठ है, तमाम विपक्ष के नेताओं में उनकी पैठ है, तो नीतीश कुमार का सक्रिय होना कांग्रेस के लिए भी अच्छे दिन की खबर है।
मौसमी, और भी पार्टियों को एक साथ लाने की बात कही जा रही है, नीतीश के चेहरे को आगे रखकर कांग्रेस किन पार्टियों को एक साथ ला सकती है?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपकी यहाँ पे नीतीश की महत्वाकांक्षाएं हैं, वो पीएम उम्मीदवार को लेकर उनकी कई जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता बयान दे चुके हैं कि वो पीएम मटेरियल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं, तो जाहिर तौर पर उनकी महत्वाकांक्षाएं तो हैं, पर इस वक्त शायद विपक्ष के नेता इसको लेकर उनमें एक सहमति है कि पीएम कैंडिडेट को लेके जैसी बात छिड़ती है मामला बिखर जाता है, बात भटक जाती है और डाइवर्जन हो जाता है। तो ये सब नेता कहीं ना कहीं अपने अरमानों को बांध दे अब इस बात पर शायद राजी होंगे कि ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर पीएम और पीएम और बीजेपी की नीतियों को लेकर हमको आमना सामना करना है, ना कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को उड़ान देनी है। और इसी के संदर्भ में आप देखिए कि आज नीतीश कुमार खड़गे के घर जब आते हैं 10 राजाजी मार्ग, तो उनके साथ राहुल गांधी तेजस्वी यादव भी होते हैं, और संचालक वो होंगे या नहीं, क्योंकि यूपीए का कोई संचालक नहीं था, तो क्या यूपीए ही रहेगा या यूपीए के इतर कोई और नाम रखा जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। और कौन कौन से दल आएंगे, कुछ दल जो बेरुखे हैं या कांग्रेस से परहेज करते हैं उनको मनाने का काम दिया गया है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को, जो कि लालू यादव यहाँ पे चाणक्य की भूमिका में आ सकते हैं कि वो जोड़ घटा लगा सकते हैं, पर अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना कि नीतीश संचालक होंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है और 1 महीने के भीतर एक और बड़ी बैठक होनी है, तब तक मुझे लगता है कि पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी।
शुक्रिया मौसमी। फरवरी 2021 की पहली तारीख थी जब म्यांमार में सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली थी, देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। म्यांमार के नेता आंग सान सू की और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के दूसरे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। इस वाकये को 2 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। हर रोज अखबारों में म्यांमार पर किसी न किसी मिलिट्री एयर स्ट्राइक की खबर आती है जो खुद वहां की आर्मी अपने लोगों पर करती है। ऐसी ही एक घटना कल भी हुई। लगातार 20 मिनट तक म्यांमार की सेना ने वहां के लोगों पर फायरिंग की, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, इसमें दर्जनों महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमला म्यांमार के पाजीगी शहर में हुआ जब पीपल्स डिफेंस फोर्सेस का ऑफिस खोला जा रहा था। पीपल डिफेंस फोर्सेस देश में मिलिट्री के खिलाफ एक अभियान चला रही है और इसी से वहां की सेना को दिक्कत है। यूएन ने सेना की तरफ से किए गए इस हमले की निंदा की है और इस हमले को परेशान करने वाला बताया है। हालांकि कठोर कार्रवाई नजर नहीं आती, लेकिन क्यों, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पिछले 2 साल म्यांमार के लोगों के लिए कैसे रहे ये जानते हैं। बता रही हैं इंडिया टुडे टीवी में फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन।
देखिए जिस तरीके से फरवरी 2021 से लेके अब तक जिस तरीके से मिलिट्री हुंटा यानी कि वहाँ का जो मिलिट्री रिजीम है, उन्होंने प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट्स को, पॉलिटिशियंस को, जो प्रो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको जिस तरीके से डिटेन किया, बंद किया, जो क्लैम्पडाउन नज़र आ रहा है, उससे साफ नज़र आता है कि म्यांमार इन द नियर फ्यूचर कोई बदलाव नहीं। एक था रोहिंग्या क्राइसिस जहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स को म्यांमार से भगा दिया गया, जो भाग के नेबरिंग कंट्रीज में आ गए और बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया उसकी वजह से। दूसरा है जब इन्होंने देखा कि इलेक्शंस हुए थे उसमें आंग सांग सूची की पार्टी उनके जो प्रॉप्ड अप पार्टी है उससे ज़्यादा और कई ज़्यादा वोट्स पा रहे थे, तो उनको लगा कि ये खतरे की घंटी है कि अगर ये इतने ज़्यादा मेजॉरिटी से आएंगे तो जो मिलिट्री की मिलिट्री का जो पार्टी है वो दब जाएगा और मिलिट्री की जो सरकार है यानी कि जो दबदबा है वो भी कम हो जाएगा। तो ऐसा लगता नहीं है कि इन द नियर फ्यूचर कुछ सुधार आने वाला है। सुधार क्यों नहीं आ रहा ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि म्यांमार के पास हमेशा चीन का साथ होता है। तो आप संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाए, कहीं पे भी जाए, तो आपको उसका रेमेडी नहीं मिल सकता, क्योंकि एक वीटो के साथ चाइना हमेशा म्यांमार के साथ खड़ा नजर आएगा। भारत के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि ये एक नेबरिंग कंट्री है और अगर म्यांमार से आप दोस्ती नहीं रखते हैं तो आपको जो इंसर्जेंसी का सामना करना पड़ा नॉर्थ ईस्ट में वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए न्यू दिल्ली बहुत ही मेजर्ड वे में म्यांमार के साथ डील करता है। जो इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली पर इतना ज़्यादा कंडेमनेशन आया है, वो एक ऐसा इवेंट हो रहा था जहाँ पर जो मिलिट्री कह रही है कि बहुत सारे एंटी कंट्री एलिमेंट्स थे, लेकिन अगर आप फुटेज देखें, अगर आप रिपोर्ट्स देखें, तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, सिविलियंस थे, तो कई सारे सिविलियंस की भी मौत हो गई है। तो टू एंड फ्रो चलता रहेगा। म्यांमार की उनटा ये भी कह रही है कि वहाँ के जो डेमोक्रेटिक पीपल्स डिफेंस फोर्सेस जिसे कहते हैं वो PDF, उन लोगों ने खुद माइन कर दिया था। अब ये ब्लेम गेम, हमें पता है कि एयर रेड्स हुए थे, एयर स्ट्राइक हुए थे और सिविलियंस, काफ़ी सारे सिविलियंस मारे गए इस पूरे एयर रेड में, लेकिन मिलिट्री हुंटा ऐसा नहीं लगता ऐसा कोई स्टैंड या स्टेप लेने वाला है जो वापस से डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े। तो देखना होगा कि इस रीसेंट इंसिडेंट के वजह से म्यांमार पर क्या सैंक्शंस लगने वाले हैं, ऑलरेडी सैंक्शंड है देश, और कौन से देश है जो ऐसे वेस्टर्न सैंक्शंस को मानेगा।
गीता, आपने सैंक्शंस का जिक्र किया है, तो क्या रूस की तरह ही म्यांमार पर भी सैंक्शंस लगे हैं?
बिल्कुल है, म्यांमार पे भी सैंक्शंस है। म्यांमार काफ़ी सैंक्शंड देश है, ऐसा नहीं कि उनके लीडर्स पर सैंक्शन नहीं है, उनके लीडरशिप पर सैंक्शन नहीं है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे मीटिंग्स हैं जैसे आसियान की मीटिंग्स थे जहां पर म्यांमार को नहीं इनवाइट किया गया, क्योंकि जब तक वापस से डेमोक्रेसी नहीं आता, आसियान के कंट्रीज़ भी यही कह रहे हैं कि आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ देश हैं जो इन्वाइट कर देते हैं क्योंकि उनको उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि म्यांमार के साथ दोस्ती बनाए रखे, लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि म्यांमार आसियान जैसे ग्रुपिंग, आरसेप जैसे ग्रुपिंग में आके मीटिंग्स में बैठे जब वो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड बाय द पीपल है उनको नहीं भेज रहा और उनके जनरल आर्म्स है। इसीलिए उनको बिजनेस करना, उनका ग्रोथ देखिए, उनके जो बिजनेस डीलिंग्स देखिए, उनका ट्रेड देखिए, काफ़ी कर्टेल्ड और लिमिटेड है। उसमें भी जितना भी करते हैं वो मैक्सिमम चाइना के साथ करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई देश किसी देश को US के सैंक्शंस या वेस्टर्न सैंक्शंस को मानना ज़रूरी है, तो और चाइना तो बिल्कुल ही नहीं मानता। तो चाइना, अब रशिया भी, क्योंकि रशिया इतने ज़्यादा पोलराइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं कि एक साइड ले लिया है। तो ये ऐसे देश हैं जो अभी भी म्यांमार के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, डीलिंग्स कर रहे हैं। इनफैक्ट भारत भी अपने लाइंस ऑफ क्रेडिट म्यांमार को भेजता है, लोगों की मदद करता है, लेकिन वहाँ पे जो सितवे पोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं और जो रखाइन स्टेट में बड़े सारे प्रोजेक्ट्स थे उन सब में भारत इन्वॉल्व है, लेकिन भारत डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि उन्हें पता है कि जो रखाइन इलाका है यहाँ पे ज़्यादातर रोहिंग्या रहते थे और वो चाहते हैं कि वहाँ पे घर बन जाए ताकि रोहिंग्या वापस जा सके, स्टेबिलिटी आ जाए रीजन में।
शुक्रिया गीता मोहन। अब अर्थशास्त्र की बातें करते हैं। मार्च महीने के लिए खुदरा महंगाई का डेटा आ गया है। CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 5.66% रहा है। ये फरवरी में ये 6.44 था। महंगाई में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बीते महीने खुदरा महंगाई 15 महीने के निचले स्तर पर रही। फूड इन्फ्लेशन रेट भी घटा है। बीते महीने में ये 4.79% रहा, जो फरवरी में 5.95% था। मंथली आधार पर इसमें बड़ी गिरावट आई है। बता दें कि फरवरी में CPI इन्फ्लेशन रेट 3 महीने के उच्चतम स्तर पर 6.52% पर पहुंच गया था। कोर इन्फ्लेशन रेट 6.1% से घटकर 5.8% पर आ गया है। इन आंकड़ों को आसान शब्दों में कैसे समझे, समझने के लिए हमने फोन भी लाया दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हिमांशु सिंह को।
अभी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा जो सरकार की तरफ से आया है, जिसमें कहा गया है कि इन्फ्लेशन की दर फरवरी से मार्च महीने में थोड़ी कम हुई है, और सरकार का कहना है कि फरवरी महीने में 6.44% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, जो कि अब 5.6% का हो गया। लेकिन साथ में ये भी है कि ये फूड इन्फ्लेशन CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो फूड इन्फ्लेशन को मेजर करता है, जिसमें वेजिटेबल प्राइसेस के कम होने की वजह से ये इन्फ्लेशन का दर कम आया है। बट सीरियल्स की प्राइसेस, अनाज खाद्यान्नों की कीमतें उसी रेशियो में बढ़ दी गई हैं। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि ये ओवरऑल मुद्रास्फीति कम हुई है, जो कि पिछले साल से बढ़ती हुई चल रही है।
अभी हाल ही में हमने देखा कि RBI ने रेपो रेट को जस का तस रहने दिया, हालांकि उम्मीद थी कि ये बढ़ेगी। तो महंगाई दर काबू में आ चुकी थी, क्या इसलिए ये नहीं बढ़ाए गए, या रेपो रेट ना बढ़ने के असर हम आगे देख सकते हैं?
नहीं, रेपो रेट को बढ़ाने की जो बात थी वो RBI के अलावा जो इकोनॉमिस्ट और अलग अलग बैंकों के चेयरमैनों की तरफ से भी ऐसा मानना जाना लगा था कि इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को USA की इकोनॉमी से अलग रखकर देखने की जरूरत है, क्योंकि USA की इकोनॉमी में जो रेपो रेट बढ़ाया गया, वहाँ के ब्याज दरें बढ़ाई गई वहाँ के सेंट्रल बैंक के द्वारा, उसकी वजह से बहुत सारे बैंक बैंकक्रप्ट हो गए। और ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि इंडिया में भी अगर मौद्रिक नीति में वैसे ही बढ़ोतरी चलती रही तो इंडिया के साथ भी, इंडिया को भी ऐसी स्थिति झेलनी पड़ सकती है। पर तो इसके लिए सरकार ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मानना था कि हमें थोड़ा पॉज लेना चाहिए, लेकिन इस बार के मौद्रिक नीति का जब RBI के गवर्नर प्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये केवल इस तिमाही के लिए पॉज है, रुकावट है, अगली तिमाही में दोबारा हम रिव्यू करेंगे अर्थव्यवस्था में आ रहे चेंजेस को और उसके अकॉर्डिंग फिर फैसला लिया जाएगा। उनका ये कहना है कि ये वन टाइम मेजर है। ऐसा इसलिए भी जरूरी हो गया था कि पिछले साल मई से जो रेपो रेट बढ़ाए गए वो 250 बेसिस पॉइंट से अभी तक बढ़ाए जा चुके हैं, जिससे ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने के साथ साथ जो समग्र मांग है, अर्थव्यवस्था का एग्रीगेट डिमांड जिसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड कम हुआ है, तो मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल करने में उससे मदद मिली है। और RBI का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेट है, अपर बैंड जो RBI ने बना रखा है कि अगर 6% से ऊपर जाएगा तो RBI उसमें इंटरवीन करेगी, तो आपका ये कहना कि जो मुद्रास्फीति में कमी आई है, 6% से कम आई है फरवरी और मार्च दोनों महीने में, उसको ध्यान में रखते हुए RBI ने ये भी सोचा कि हम रेपो रेट को अभी अपवर्ड रिवाइज करने से बचते हैं, रोका है इस बारी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में ये अपवर्ड रिवीजन नहीं किया जाएगा, हो सकता है कि अपवर्ड रिवीजन हो भी जाए, क्योंकि जो मानसून, जो समर सीजन की वजह से मांग बढ़नी है, प्राइसेस जो दोबारा रबी का जो मौसमी बरसात हुए हैं उसकी वजह से जो नुकसान झेलना पड़ा है, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि रबी फसलें प्रभावित हुई हैं, जिससे उनकी कीमतों में, रबी के फसलों की कीमतों में बढ़ोतरी हो और इन्फ्लेशन दोबारा से अपना सर उठाना शुरू कर दे।
तो जैसा कि हिमांशु जी ने बताया, अभी तो ये नंबर राहत देने वाले हैं, लेकिन आगे ये परेशान कर सकते हैं। और अब वक्त हो गया है भौचक का, लेकर आए हैं आपके लिए कुमार केशव।
नहीं नहीं, जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। आवाज से भले ऐसा लग रहा हो, पर ये ढोल किसी की शादी का नहीं है। ये एक वायरल वीडियो है जिसमें एक सफेद रंग की बड़ी सी गाड़ी फूलों से सजी हुई है, बोनट पर एक गुलदस्ता रखा है, कार की रूफ खुली हुई है और उसमें से झांक रहे हैं चश्मा पहने हुए एक पुलिस अफसर।
अगल बगल कुछ और पुलिस वाले कदम ताल कर रहे हैं और ढोल है कि बज रहा है। शुक्र है कि हुड़ हुड़ दबंग दबंग गाने पर अपनी कमरबंद को पकड़कर उसे हिला नहीं रहे थे दरोगा जी। हिला रहे थे वो अपना हाथ कार की खुली छत से और कर रहे थे अभिवादन। अभिवादन करते इन खाकी धारी भाई साहब का नाम है सुरेंद्र स्वर्णकर, जो छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ टाउन इंस्पेक्टर हैं और इनके इर्द गिर्द जो पुलिस वाले चल रहे हैं ये इन्हीं के थाने के संगी साथी पुलिस वाले हैं। पर हुआ ये है कि नक्सल प्रभावित इस इलाके से अब इनका हो गया ट्रांसफ़र और अब ये बिलासपुर में ज्वाइन करने जा रहे हैं और इसी खुशी में इन्होंने इस ढोल तमाशे का इंतज़ाम कर लिया। भाई साहब, पुलिस वालों की ज़िंदगी में ट्रांसफ़र एक बड़ी अजीब घटना है। अपनी मनपसंद जगह हो तो मज़ा वरना सज़ा। कई बार तो नाना प्रकार के तिकड़म और पेंच भिड़ाकर कमाऊ चौकियों में ट्रांसफ़र कराई जाती है और फिर बाकायदा अपने सर्कल में शेखी भी बघाड़ी जाती है कि वहाँ हमारी मौज है, लगता है कि ड्यूटी थाने में नहीं स्वयं लक्ष्मी जी के दरबार में लगी है। एक सर्वे के मुताबिक आज़ादी के बाद देश में सबसे ज़्यादा फलने फूलने वाले जो उद्योग हैं उनमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग उद्योग अग्रगण्य है। तो वापस सुरेंद्र साहब की बैंड बाजा और बदली पर आते हैं। क्या है कि उनकी किस्मत ज़रा कच्ची है, क्योंकि ये वीडियो इंटरनेट पर ऐसा वायरल हुआ कि उनके बिलासपुर पहुंचने से पहले ये वीडियो पहुंच गया और जब ये पहुंचे तो इनको थमा दिया गया सस्पेंशन लेटर। वायरल वीडियो पर एक्शन लेते हुए बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बीएन मीणा ने सुरेंद्र स्वर्णकर को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने और जुलूस निकालने के आरोप में सस्पेंड कर दिया। एक रिपोर्ट में ये भी आया है कि डोंगरगढ़ में 11 महीने की पोस्टिंग से पहले स्वर्णकर साहब जो हैं बिलासपुर में ही पोस्टेड थे। वहां कोरोना लॉकडाउन के दौरान एक पेट्रोल पंप कर्मी और एक स्टूडेंट की बेरहमी से पिटाई करने के मामले में भी वो विवादों में आए थे और अब ये एक भौचक कांड हो गया। कुमार केशव, आज तक रेडियो।
शुक्रिया केशव। तो इसी के साथ आज का दिन भर यहीं खत्म होता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है radio@aajtak.com। अगर आप हमें एप्पल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो अपने आज के एक्सपीरियंस के आधार पर हमें रेटिंग ज़रूर दें और हमारे दूसरे शोज़ को भी ज़रूर सुनें। क्रिकेट फ़ैन हैं तो आपके लिए है IPL की टेंटें। इतिहास की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे खास शो इति इतिहास में आपको मज़ेदार कहानियां सुनने को मिलेंगी। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है कुंदन ने, साउंड मिक्सिंग है सचिन त्रिवेदी की। मेरा नाम है जमशेद कुमार सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।